अब एक सवाल पैदा होता है कि क्या फिर सवाल करें ना, आप स्टूडेंट बैठे हैं, आप किसी में कोई सवाल आए तो ना करें, तो इसका मिजाज भी नोट कीजिए। एक होता है सवाल इल्म हासिल करने से पहले, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन इल्म हासिल करने के बाद सवाल करना फायदा देता है। मसलन आज आप आए और आप आते ही बात करते, कोई भी आज के सबक के अंदर जो बात आनी थी, आप कहते सबक ना पढ़ाएं, बस इसके मुतालिक चंद सवाल जवाब दे दें मुझे, तफसीर छोड़ दें, क्वेश्चन आंसर सेशन रख लें, कभी फायदा नहीं होगा। किसी जगह कोई स्पीकर आए, लोग के नहीं लेक्चर ना दे, सिर्फ क्वेश्चन आंसर दे दें, कभी फायदा नहीं होगा। लोग फायदा नहीं ले पाते सिर्फ सवाल से, वो सिर्फ सुनते हैं और आगे चल पड़ते हैं। बेस्ट मसनून तरीका क्या है, पहले एक मौजू को सुनो, क्लास में एक टॉपिक चल रहा है सुन लो, सुनने के दौरान जो सवाल जहन में है उसको अपने पास लिख लो। और अच्छे उस्ताद कौन होते हैं कि जहां कोई एक बात पूरी हो फिर वो पूछते हैं कि इसमें से कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। अच्छा, अब इसका जरा ऑपोजिट इस पे उनका अमल देखिए। एक तो उल्टे सीधे सवाल पूछते थे बेतुक्के, और सवाल भी वो पूछते थे जिसमें गुस्सा आए, एक दूसरे के खिलाफ, फिरका वारियत, यानी मिसाल आज के दौर पे ले लें, ये बरेलवी कौन होते हैं, अच्छा ये बताएं कि ये हरी पगड़ियों वाले कौन होते हैं, जरा अच्छा ये बताएं ये वहाबी कौन है, क्यों कि जुबान से निकले कोई बात वहाबियों के खिलाफ और जाके वहां से उठा दो, और कोई वहाबी मिले उसके तोबा तोबा उधर ना जाना, वो तो वहाबियों के खिलाफ बातें करते हैं, ये अंदाज होता था। सवाल पूछते भी बेतुक्के थे और पूछते भी थे एक्सप्लॉयट करने वाले। नुकसान क्या होता कि जो आ रहे होते थे वो तो पीछे हो जाते थे। सवाल जवाब कब हो, बाद में हो, देखिए हर सवाल जो होता है ना वो जवाब लेने के लिए नहीं आता। तरीकाकार एक और भी होता है, और वो क्या करते थे कि अल्लाह के नबी अभी कोई बात पूरी भी ना करते तो बीच में हाथ खड़ा कर देते, ये कर ले पूछ ले, इंतहाई बुरा अदब है। नंबर एक गुस्ताखी, जैसे आप बात करें तो बीच में कोई काटने लग जाए। नंबर दो क्या होता है कि जब कोई बंदा भी दीन की बात करता है ना तो वो उसके लिए एक जहन लेके चलता है, आज इस मौजू को यूं लेके चलना है, पहले ये आहिस्ता ये बताना है। बस दफा एक जुमला बोलना होता है, पूरे सबक में मैं इंतजार करती हूँ कि अभी नहीं ये जुमला बोलूंगी, ये पूरा सबक होने के आखिर में बोलूंगी ना तो आपको ज्यादा फायदा होगा, तरतीब होती है उस्ताद के जहन में, ठीक है। अब जब बीच में बोला, उस एक सवाल से बात इधर से चली उधर चल पड़ी, क्या आपने कभी कोई ऐसी क्लास नहीं अटेंड की कि अच्छी भली तफसीर की क्लास चल रही होती है, कोई एक मौजू आ गया, उस्ताद बेचारे ने बताई बात और बीच में एक ने कहा नहीं, सवाल पूछा, दूसरे ने उसको जवाब दिया, और 10-15 मिनट में वो पूरी क्लास जो है ना आपस में डिस्कशन में होती है, लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, कभी आपने सुनी? मैंने सुनी है, मैंने ऐसी क्लासों में भी बैठ के अपने आप को चेक करने के लिए देखा है कि मेरी क्लास में लोग क्या फील करते होंगे, कि यकीन करें कि वो वीकली क्लास करते थे और हर वीक का तकरीबन एक रुकून डेढ़ रुकून का सबक होता था। कई दफ़ा ऐसा हुआ कि जब सबक उस्ताद ने शुरू किया, पहले बाकी चीज़ें जो होनी थी वो हो गई, चले जी अब इसकी तफसीर करते हैं। अभी वो अल्लाह का बंदा, जैसे आज के सबक में ले लें कि रायना ही के लफ्ज़ पे, हालांकि आज 4 टॉपिक चल रहे हैं जिसमें अभी हम तीसरे पे पहुंचे हैं। अब वो क्या हुआ कि बीच में किसी ने ऑडियंस में से लुकमा दे दिया, अब वो देता है ना तो दूसरा भी, और उस्ताद भी ढीले डाले हैं ना, उन बेचारों को क्लास कंट्रोल करनी आती। हुआ क्या कि उसने जो नुकता उठाया ना वो बिल्कुल अनरेलीवेंट होता कि उस पर बात शुरू कि उस्ताद ने भी शुरू कर दी। मेरा ख्याल है कि 1.25 घंटे की वो क्लास हुई, मैं वहां बैठी हुई थी, मैं बोलती नहीं जब तक के कोई मुझे मजबूर ना कर दे बोलने को, मस्जिद में होती थी वो क्लास। एकदम अजान की आवाज आ रही है तो उन्होंने कहा अच्छा वो आज का तो वक्त ही खत्म हो गया, चले अब फिर आज की तफसीर इधर ही काफी खत्म कर। मैं मुंह देख रही थी कि ये क्या हुआ, की वजह क्या बनी, बीच का सवाल, ला तसलु, बीच का सवाल जो होता है ना, सवाल बीच में पूछना, हाथ खड़ा करना, हिलना, ये तकब्बुर की भी अलामत है, ये भी निके। कुछ लोग चाहे बैठे होते हैं ना वो खुद को छोटा नहीं समझ रहे होते, वो सुनने नहीं आ रहे होते, वो असल में अपनी सुनाना चाहते हैं, तो किबर और बड़ाई की हम इतनी देर चुप रहे हैं, फिर बाद में कोई सवाल पूछा हम नहीं पूछते, ये अंदाज। तो वो किबर बड़ा बनते थे, उनका अपने इल्म पे गुमान बहुत था। अच्छा एक और भी अंदाज होता है, और वो कहकर जो आता है ना उसने वो आयत पहले कहीं और सुनी होती है और उसमें जहन में उसके कोई और बातें होती हैं, ये भी मैंने प्रैक्टिकली देखा है लोगों को, कि जैसे अब मिसाल है कि रायना की आयत मैंने आपके सामने शेयर कर दी, आप मैं किसी और किसी की क्लास में, या इवन मैं खुद कह सकती हूँ आपको कि आप पिछले 2 साल 3 साल की रिकॉर्डिंग में कोई भी सुनते हैं, आपने उसमें इसमें कोई बात सुनी होगी, तो फिर वो क्या करते हैं, ठहरे मैं इसमें जरा कुछ ऐड करा दूँ, एक होता है ना आप अपना कमेंट दें, बहुत अच्छी बात है, तो ऐड कराने में फिर क्या कि वो उस बात को, हदीस को, आयत को पूरा कोट करने में, और वो हुआ क्या, अब एक बंदे ने पहले कोड की थी, अब नहीं की, इसमें कोई हिकमत होगी ना। आप अपने एक बच्चे के सवाल का एक जवाब देते हैं, दूसरे के सवाल का दूसरी तरह जवाब देते हैं, हर तरह के माहौल ऑडियंस का फर्क होता है। तो किस्सा मुख्तसर ये कि इसमें सेल्फ प्रोजेक्शन भी है, अपने आप को बड़ा बनाना। तो अल्लाह ताला ने इन सारी बातों से रद्द कर दिया। अब ये तीन शोशे पढ़ लिए, वजह क्या है, क्या जज्बे मुहर्रे का क्या रीजन थी कि जिसकी वजह से वो ऐसे सवाल करते थे। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि वद कसीरु मिन अहलिल किताबी, चाहते हैं अहले किताब के बहुत से लोग, यरुद्दूनकुम मिन बादी ईमानिकुम कुफारा, ईमान लाने के बाद तुम्हें कुफर में डाल दें, यानी तुम्हें कुफर के अंदर ले जाएं कि तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करके काफिर हो जाओ। ये देखिए पूरा सबक तौहीन रिसालत पे, तीन दफा शायद इसमें कुफर का लफ्ज आ रहा है, उन लोगों के लिए जो अल्लाह के नबी की इज्जत नहीं करते, या जाहरी ताजीम में शिरक कर जाते हैं, या बिल्कुल कहते हैं हदीस को तो मानने की कोई जरूरत नहीं और दिस एंड दैट वो बेहतर नहीं है। तो अल्लाह सुबहान तआला इसमें यही बात कह के फरमाते हैं कि ये चाहते क्या है कि तुम लोगों को दूसरी तरफ ले जाएं। और इससे देखिए गुस्सा उनके दिलों में जो अल्लाह के नबी के लिए और दूसरे दीनदारों के लिए था, क्या वजह क्या है, वद्द कसीरु मिन अहलिल किताबि लौ यरुद्दूनकुम मिन बादि ईमानिकुम कुफारा, बहुत सारे अहले किताब ये चाहते हैं कि आपको ईमान लाने के बाद कुफर की तरफ फेर दें, क्यों, हसद मिन इंदि अनफुसिहिम। इसको हाईलाइट कर लें, ये है वो मोटिवेशनल फैक्टर, जज्बा जिसकी वजह से ये शोशे उठाते थे, हसद उनके दिलों में किसके खिलाफ था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, और किसके था, इस्लाम के, कुरान के, शरीयत के। हदीस में आता है कुल्लु ज़ी नेमतिन महसूद, हर नेमत वाले से हसद किया जाता है। यहां से आपको दीनदारों का हसद भी दिख रहा है, दीनदार थे ना यहूद, को बेदीन तो नहीं थे, अल्लाह के नबी के रास्ते में इतने रोड़े जाहिलों ने नहीं अटकाए, वो तो कहीं किसी ने फेर दिए होंगे ना, ताइफ के मैदान में पत्थर मार दिए, लेकिन जितने रोड़े उस दौर के दीनदारों ने डाले, ये उसका एक रोड़ा है। वजह हसद, मिन इंदी अनफुसी, खुद ही अपने दिलों में पाला हुआ, वजह कोई नहीं, क्योंकि हासिद जो होता है ना वो अल्लाह की बांट पे राजी नहीं होता, वो दूसरे में नेमत देख के कहते इसको क्यों मिली, उसे छिन जाए। वो कहते हैं ना एक बकरी अगर उसकी दुम कटी तो उसका दिल चाहता है सबकी दुमे कट जाए, ये हालात है। और ये कोई भोलपने में नहीं हो रहा, अनजान नहीं है, बल्कि मिम्बादी मा तबय्यन लहुमुल हक, जबकि इनके अंदर इनके लिए हक वाजे था, इनके दिल मानते थे कि अल्लाह के नबी जो हैं वो इनसे ज्यादा जानते हैं, अल्लाह के नबी वही नबी हैं जिनका तذکرہ इनकी किताबों में है, इसके बावजूद जैसे रवैये अख्तियार करते हैं। अब आप, मुझे भी ईमान है अपनी तरह आपके दिल पे भी, कि आप दिल में गुस्सा महसूस कर रहे होंगे ना, अल्लाह के नबी की तौहीन बार बार आपको तंग करते हैं। आज भी मुसलमानों को कोई सताता है तो दिल में क्या आता है, मारो इनको, खबर लो इनकी, ये इतने बेअदब हैं। लेकिन अल्लाह क्या सिखाता है, फाफू वस्फहू, दरगुजर करो, जाने दो, अफो दरगुजर से काम करो, मत रिएक्शनरी बनो। ये जो लफ्ज है ना फाफू, इसके नीचे लिख लीजिए डोंट बी रिएक्शनरी। ये है मुसलमानों को तरीका सिखाया गया कि जब कोई तुम्हारे नबी के कार्टून बनाए, उनको रंगीला रसूल कहे, उनकी बीवियों के नाम पे बातें करे, तो क्या करो, फाफू वस्फहू। कब तक, आखिर कब तक सब्र करेंगे, कहा हत्ता याती अल्लाहु बि अम्रिही, यहाँ तक कि अल्लाह अपना अमर ले आए, अपना काम ले आए। वो कौन सा है, कि मुसलमानों जब तुम्हें आखिरी गलबा हासिल हो, जब तुम बाहर के दुश्मनों से निबट लोगे, तो फिर इन अंदरूनी दुश्मनों के खिलाफ भी तुमको आज़ादी दी जाएगी, फिर तुम इनके ऊपर चलो, स्ट्रॉन्ग करो, पहले अपनी कोई सेह बनाओ, कोई तरक्की करो, कोई दुनिया में काम करो, कोई रिसर्च वर्क करो, तुम कुछ अपने आप को करके दिखाओ कि ये लोग इस्लाम के खिलाफ ही क्यों हर वक्त बोलते रहते हैं। बाकी रहेगी बात कि ये नहीं हो सकता अभी तुम्हें लगता है, तो याद रखो कि इन्नल्लाह अला कुल्ली शयइन कदीर, अल्लाह ताला हर चीज पे कुदरत रखने वाला है। तुम उठो, तुम दुनिया के मैदान में मेहनत करो, तुम दीन में सच्चे रहो, मेहनत करो, अल्लाह पे तवक्कुल करो, फिर देखो कि अल्लाह तुम्हारी कितनी मदद करता है। और अल्लाह ने ये वादा पूरा किया था करूने उला में, सहाबा कराम के दौर में अल्लाह ने ये गलबा दिखा दिया कि सारे के सारे लोग जो थे ऐसी बातें करने वाले वो पीछे हो गए, इनसे तो दरगुजर करो, इनके साथ ना लगो, बल्कि अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह की कुदरत देखो, अल्लाह तुम्हारी मदद करे, तो फिर उसके लिए क्या करो, आप सोचिए जरा क्या होना चाहिए, वाकीमुस्सला, पहले खुद नमाजें तो पढ़ो। नमाज तुम पढ़ते कोई नहीं हो, काफरों को तुम बुरा कहते हो, तुम तो नमाज ना पढ़ के खुद कुफर के करीब पहुंचे हुए हो। वातुस ज़का, ज़कात दो, लोगों के साथ ताल्लुक अच्छा करो, शेयरिंग की आदत डालो। वमा तुक़द्दिमु लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन, और जो तुम अपने लिए आगे भेजोगे खैर में से, तजिदूहु इंदल्लाह, तुम उसको अल्लाह के पास पाओगे, क्योंकि इन्नल्लाह बिमा तामलून बसीर, बेशक जो अमल तुम करते हो अल्लाह ताला इसको खूब देखने वाला है। ये है आज के मुसलमानों के लिए एजेंडा, फलां ये कहते हैं, फलां ये कहते हैं, हर वक्त शोशे उठते रहते हैं ना। वो तीन शोशे थे यहूद के या नॉन मुस्लिम्स के, हर दौर में आज है कोई इससे ज्यादा है। करो क्या, उनको कुछ ना करो। अल्लाह के नबी की मतरूक सुन्नतों के नाम पे इस रबीउल अव्वल में मैंने एक छोटी सी सीरीज दी थी, हर दिन एक मतरूक सुन्नत पे बात करती थी। उसमें से एक सुन्नत बताई थी कि अल्लाह के नबी की एक सुन्नत जो छूटी भी है, वो क्या है कि जब दुश्मन आपको बुरा भला कहते थे ना, तो आप वहां से यूं गुजर जाते थे जैसे आपको कहा ही नहीं। हम कहते हैं इन्होंने हमारी मस्जिद गिरा दी, बाबरी मस्जिद का मसला पुराना तो नहीं है, तो आपने बनाई क्यों वहां? जब आप उनका मंदिर तोड़ के उसकी जगह पे मस्जिद बना देंगे, तो कल आपने मौका दे दिया कि वो आपकी मस्जिद के अंदर कूड़ा करकट डाल के उसको जला दे। आज के मुसलमान अगर सिर्फ इस चीज को समझ जाए ना कि रिएक्शनरी होने से इस्लाम को फतह नहीं होगी, अपनी इस्लाह करो, पहले नमाज पढ़ो, रोजे रखो, तुम पहले अपना इस्लाम अल्लाह को दिखाओ तो सही, जिस पे मदद आए। वो किसी ने कहा ना कि अल्लाह ताला के फरिश्ते आते हैं मदद को, तुम हमेशा कहते हो, तो आज के दौर में क्यों नहीं आ रहे? वहां तो बदर में आए, इस तरह आए, तो अब क्यों नहीं आते? उन्होंने कहा नहीं आते हैं, आए थे, फिर वहां उनको मुसलमान ही नहीं कोई दिखा तो वापस चले गए। यानी आज वो किरदार नहीं है जो अल्लाह को जोश दिलाए, जो अल्लाह की मदद लेकर आए। तुम्हारे अपने करतूत तो ऐसे हैं, नमाजों के वक्त पे तुम सोए रहते हो, अपनी मर्जी के वक्तों पे तुम नमाज पढ़ते हो, तुम्हारी जिंदगी अपनी है। और रह गई बात वमा तुकद्दिमु लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन, तो उसकी जगह दुनिया जमा करते रहते हो, यही है ना आगे बढ़ना। उसकी जगह तुम्हारी दुनिया की बातें, खाने पीने दावतें पार्टियां, आज उधर आज उसके घर दावत आज उसके, तो तुम्हारी तो आखरत जमा करने के बजाय दुनिया जमा करने की बात हुई है। और जकात तुम्हें देनी इतनी मुहाल है, तुम चाहते हो कि सारा कुछ उसी जकात के माल से ही हो जाए, जहां नहीं भी लगती जबरदस्ती लगाने की कोशिश करते हो, और 97.5 को अपने लिए जमा करके रखते हो कि अब जकात देते हैं तो अब इससे ज्यादा क्या दें। हाँ देखेंगे अगले साल जकात निकलेगी तो देंगे, और चाहे उससे पहले वो नेकी का मौका छिन जाए। ऐसे मुसलमानों पे अल्लाह की मदद आएगी। इन अल्लाह बिमा तामलून बसीर, बेशक अल्लाह ताला जो तुम करते हो, जिस चीज पे तुम्हारी नजर है उसको खूब देखता है। आप देख रहे हैं कि एक चीज में से एक बात निकल रही है, एक से एक निकल रही है। यहूद के इन शोशों के साथ अब एक खुशफहमी जो उनके दिल में कब पैदा हुई, जब सच्चे दीन से उन्होंने खुद को तोड़ा। और वो क्या थी, बड़े गौर से सुनिएगा इस आयत को, इसका ज्यादा जवाब हमें कल मिलना है, इसलिए आज सिर्फ इसको गो थ्रू करूंगी। वकालू, और उन्होंने कहा, किन्होंने कहा, उन सब ने कहा, क्या लई यदखुलल जन्नत, कोई जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता, हाँ मगर सिर्फ वो होगा, इल्ला मन का नहुदन, जो यहूदी होगा। लिखिए जरा, जन्नत में सिर्फ यहूदी जाएंगे, ये कॉल किसका था? आप नीचे लिखिए, यहूद ने ये कहा। इसके मुकाबले में एक नारा नसारा ने लगाया, क्या? अब मैं आपके सामने आयत जरा बदल के पढ़ूंगी, देखिएगा, सिर्फ समझाने के लिए, मकसद आयत को तोड़ना नहीं है। वकालु लन यदखुलल जन्नता इल्ला मन काना नसारा, सिर्फ बीच में दो लफ्ज नीचे कर ले तो क्या जुमला बना, और उन्होंने कहा कि जन्नत में नहीं कोई दाखिल होगा, सिर्फ नसारा। ये किसका दावा था? नसारा का। अल्लाह ताला क्या कहते हैं, तिल का मानी जो हम, किसने कहा ये बात, ये तो सिर्फ इनकी झूठी आरजुएं हैं, तमन्नाएं हैं। कुल हातु बुरहानकुम, कहो लाओ बुरहान, दलील, कोई इसका रेफरेंस, कहीं अल्लाह ने तौरात में लिखा हो कि जन्नत में सिर्फ यहूद जाएंगे और ईसा अलैहिस्सलाम के जरिए ये बता दिया हो कि सिर्फ नसारा ही जन्नत में जाएंगे, तो लो दिखा दो। नहीं, ये झूठी बातें हैं। कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर सच्चे हो। क्या ये आयत पूरी हो जाती है इसी तरह? अब आप इस आयत को जरा और एंगल से इसी के लफ्जों को देखिएगा। वकालू लन यदखुलल जन्नत इल्ला मन काना मुस्लिमन, क्या जुम्मत मुस्लिमा भी यही दावा नहीं करती? सच बताएं कि कुरान पढ़ने से पहले शऊर के साथ जो पढ़ रहे हैं, हम सब ये नहीं सोचते थे कि जन्नत में सिर्फ उम्मत मुस्लिमा ने जाना है। मैं आपको अपना बताती हूँ, यानी मैंने अपने इल्मी सफ़र के मरहले कई साल तय कर लिए हुए थे, क्योंकि जब बंदा मुख्तलिफ, वही बात है कि तदरीजन सीखता है, तो किसी एक तरीके से सीखा फिर दूसरे से। मुझे याद नहीं पड़ रहा, लेकिन मेरा ख्याल है कम अज़ कम 4-5 साल हो चुके थे मेरे इस दरसो तदरीस में, जब मुझे पहली दफ़ा वो हदीस नज़र में आई कि जिसमें यह था कि उम्मत मुस्लिमा के अलावा पहलों लोगों में से भी लोग जन्नत में जाएंगे, और यहूद और नसारा में। मैं बड़ी डिस्टर्ब हो गई, पक्का 100% दिल में ख्याल था कि सिर्फ उम्मत मुस्लिमा ने जाना है। और ये कब हुआ? जब मैंने तफसीर इब्ने कसीर में वो हदीस पढ़ी कि जन्नतियों की कुल 120 सफ़े होंगी, जिसमें 80 सफ़े मुसलमानों की होंगी, पहली दफ़ा मेरे दिमाग में आया तो फिर ये बाकी कौन होंगे 40 लोग। फिर मुझे समझ आई कि नहीं, ये उम्मत मुस्लिमा नहीं, और भी जाएंगे। क्या आज हमें ये दावा नहीं है? दिल में छुपा बैठा है, जो करना है करो, बस मुसलमान बन के करो, नाम रख लो। वो काफिर पिएगा तो जहन्नमी, तुम मुसलमान होके पियो ताकि जन्नत में जाओ। वो जिना करे तो काफिर कहलाए, तुम जिना करो तो मुसलमान कहलाओ। आज यही खुशफहमी हम मुसलमानों के, सच के झूठ? अच्छा, बात इधर भी नहीं पूरी होती। हाँ तो बुरहानकुम, दलील लाओ। अब सवाल पैदा आता है कि ना तो यहूद के कहने से यहूदी जन्नत में चले जाएंगे, ना नसारा के कहने पे नसारा, और ना मुसलमानों के कहने पे मुसलमान, तो कौन जाएगा? तो फरमाया, बला मन असलमा वजहहू लिल्लाह। बला क्या है? बल्कि नीचे छोटा सा लिख ले, वो जन्नत में जाएगा। कौन? मन असलमा वजहहू लिल्लाह, जो अपने आप को अल्लाह के आगे झुका दे, सरेंडर कर ले, सबमिट कर दे, तन मन धन उसके आगे लगा दे, समय ना वाता ना कहना शुरू कर दे, जो अल्लाह की मर्जी को अपनी मर्जी बना ले, जो अल्लाह की पसंद का बन जाए, वो ऐसा बन जाए कि जिसको देखकर अल्लाह ताला को उस पे प्यार आने लगे। बला मन असलमा वजहहू, वजह क्या है? चेहरा। चेहरा झुकता है तो क्या होता है? सब कुछ झुक जाता है। आप सजदे में जाते हैं तो चेहरा ही जमीन पे लगता है, पूरा जिस्म झुका होता है। ये पहला दर्जा है इताअत का, लिख ले, ये पहले करना पड़ता है। फिर इसके दर्जों से गुजरते गुजरते आगे जाके वहुवा मोहसिन, फिर वो मोहसिन भी हो। मोहसिन बिल्कुल आखिरी दर्जा होता है, एहसान का दर्जा, इबादात को खूबसूरती से करना। आप देखिए कि किसी चीज का वजन बढ़ता जाए तो क्या वो खूबसूरत हो जाती है? हम तो कहते हैं औरतों का वजन बढ़ता जाए तो उनका हुस्न खत्म हो जाता है, राइट? इसी तरह नेकियों का वजन बढ़ने से नेकियां नहीं बढ़ती, खूबसूरत नहीं होती। मसलन आप कहते हैं कि फजर की 2 फर्ज और 2 सुन्नत, 4 रखते हैं, तो ऐसा करते हैं कि 10 पढ़ लें, क्या बढ़ा? वजन बढ़ गया। तो क्या नमाज खूबसूरत हो जाएगी? नहीं होगी। नेकियों की खूबसूरती सुन्नत पे रहने से, जो सुन्नत से बड़ी भी नेकी होगी ना, वो हुसन नहीं पैदा करेगी। और इस मुस्लिम से मोहसिन बनने के बीच में तदरीज है, वही जो हमने मान अनसख में पढ़ी। शुरू में क्या होता है, जैसे आप में से बहुत सारे बड़े दूर रज से आए हैं, गंदी जिंदगी बसर कर रहे थे, अल्लाह ना करे। देखिए, मैं तो उसको भी गंदा कहती हूँ ना, जो 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ता और दिन रात आंखों को गंदा करता है गंदी तस्वीरें देखकर, चाहे फन के नाम पे या एंटरटेनमेंट के नाम पे। अब कुरान की तरफ आया, मौका मिला, ले लिया। आहिस्ता आहिस्ता आप देखिएगा, ग्रेजुअली गैर महसूस तरीके से ये कुरान आपके दिल को पकड़ेगा। नमाजें ठीक होंगी, रोजे ठीक होंगे, एक चीज ठीक करेंगे दूसरी खराब हो रही है, उधर जाएंगे इधर, करते करते अल्लाह आपको तौफीक देगा और एक दिन आप मोहसिना बन जाएंगी। आपके यहाँ जो ग्रुप्स हैं वो भी इसी तरह, मुस्लिमा सबसे छोटा ग्रुप एज में, मोमिना मिडल एज, अवानुम बैना ज़ालिक, बीच की उम्र की, और मोहसिना ओल्ड एजड लोग। जब आप मुस्लिमा की सीढ़ी पे चढ़े ना, ये पहली सीढ़ी है, तो दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी पे, आखिरी पे पहुंच जाएंगे मोहसिना। शैतान यहां धोखा क्या देता है? छोटी नेकियां नहीं मुझसे होती, मुझे तो कोई बड़ा काम करना है, मुझे बड़ी नेकी करनी है। मसलन मुझे उम्मुल कुरा पढ़ने जाना है, बस अम्मी जी मैं नहीं कोर्स कर रही, मैं उम्मुल कुरा में जाऊंगी। नहीं, मुझसे ये लफ्जी तर्जमा नहीं याद होता, वो फलां जगह एक अरबिक कोर्स होता है, मैं वो सीखूंगी। सारी जिंदगी लगा दें और कुछ नहीं, यकीन करें, बास को तो शैतान इस शोशे में डालेगा कि ये क्या तफसीरों में पढ़ गई हो, तुम्हें तो कुरान ही नहीं पढ़ना आता भी ठीक। नहीं, खत्म करो कोर्स, मैं तजवीद सीखूंगी। कोई कहेगा तर्जुमा याद करें, पता नहीं गलत ना, वो फलां जगह कोई है यूनिवर्सिटी, वहां जाके मैं ग्रामर सीखूंगी। आप बड़े पे जाना चाहते हैं, अभी छोटे पे नहीं पहुंचे। सबसे पहले अला कल्बिक, मुस्लिमा से मुहसिना बनने के बीच में कुरान को दिल पे लेना पड़ता है। इस वक्त आप कुछ नहीं बन रहे, ना आलिमा ना मुफ्तिया ना कुछ, और आप इस वक्त मुस्लिमा बन रहे हैं। सिर्फ तजवीद आपको मुस्लिमा नहीं बनाएगी, सिर्फ ग्रामर आपको मुस्लिमा नहीं बनाएगी, सिर्फ आप दीन के नाम पे फिकी बातें इधर उधर से सुनते जाएं मुस्लिमा नहीं बनेंगे। सबसे पहले अपना दिल रब को दें। यहाँ बैठ के आज नियत करें कि मैंने अपने इस दिल में रब को बिठाना है जहाँ दूसरों को बिठाया होता है। अपने बछड़े तोड़ने हैं, अपने आप को अल्लाह के सामने रखना है। इस तरह आप अल्लाह की बात मानते जाएं। मैं इसको यूं समझती हूँ, आप इमेजिनेशन में लाइएगा, कि एक सीढ़ी है ना, फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। पूरा इस्लाम जो है ना सीढ़ियों में बनाएं। बल्कि ये एक्टिविटी आप लोग बना के लाएं। आप तो कोई एक्टिविटी नहीं मुझे दिखा रहे, ना बोर्ड, जुम्मा गया तो सब कुछ गया, बस आते हैं पढ़ के। तो बीच में शेयरिंग ना कराऊं तो मेरा हाल है, बीच में आपका जरा सा भी इनपुट ना हो, दिमाग खोलें। ये जो ग्रुप्स बनाते हैं उसका एक मकसद आपको जिस दिन लिखाया था, एक्टिविटीज बनाना। और इतना जहाँ क्राउड हो, माशाल्लाह इतने मल्टी माइंड बैठे हो, यहाँ तो हर दिन ढेर लगे होने चाहिए एक्टिविटीज के। जो बात कर रही हूँ उसको जहन में रखें, इसका बना के लाएं, सारी क्लास बना के लाएं। अब देखिए इस्लाम के अहकाम है ना, आप इसको ऐसे करें कि 100 सीढ़ियाँ बना लें, चले पूरी 100 नहीं बनती, 20 सीढ़ियाँ बना लें। नीचे से शुरू करें, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह को एक मानना, मोहम्मद रसूलुल्लाह दूसरी सीढ़ी, तीसरी अकीमुस्सलात, आतुज़्ज़का, वर्काओ, दीन की सारी सीढ़ियाँ करते जाए, फिर हुकूकुल बात शुरू कर दें माँ बाप से, वालदैन से। अब आप सोचिए कि ये सारी करके आखिर में क्या है, यदखुल अल जन्ना, ठीक है। अब आप सोचिए एक बंदा पहली सीढ़ी निकालनी चाहे तो बाकी ऊपर की 19 सीढ़ियाँ रहेंगी। 4 सीढ़ियाँ रहने दे के तीसरी निकाल देता हूँ, क्या रहेगा? और कोई कहे कि पहली से लेके जंप करके मैं 20वीं सीढ़ी पे जाऊं, लगाए हैं जंप, नीचे गिरेगा, हो सकता है ठोड़ी लग जाए, 19 सीढ़ियों पे गिर जाए। कौन जाएगा 9वीं पे, 19वीं पे? 1, 2, ये है मुस्लिमा से मुहसिना। चलते जाओ, चलते जाओ, जो नेकी मिलती है उसको कर लो, अल्लाह ताला फायदा दे देगा। और फिर फरमाया कि फलहु अजरुहु इंदा रब्बिही, उसका अजर है उसके रब के पास। ये दीन अमल वाला दीन है, सिर्फ बातों का दीन नहीं है। और दुनिया कैसी हो जाएगी और आखरत, वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना खौफ और ना हुज़न। आप कह लें कि टेंशन फ्री लाइफ, स्ट्रेस फ्री लाइफ, पैनिक फ्री लाइफ। आप देखें कि जितने खूबसूरत नामों के साथ ये फैशनेबल बीमारियां आज आम है ना, ये सारी जो है ना, ये खौफ और हुज़न का ही मजमू है। माजी के खौफ जो होता है ना मुस्तकबिल का होता है, और गम माजी का होता है, हाय मेरे साथ ये क्यों हुआ, गम में डूबे हुए। और खौफ के, हाय ये ना हो जाए, हाय बच्चों का ये ना हो जाए, हाय मियाँ को कुछ ना हो जाए। अल्लाह ताला कहते हैं जो इस दर्जे पे मुहसिन बन जाता है उसको तो का अन्नक तराहू तौर पे अल्लाह ताला पेश करता है। आप देखिए इतनी खूबसूरत आयत को बाज़ लोगों ने बड़ी ही गलत तरीके से कोट किया, कहते हैं इसमें देखो नबी की तो और रिसालत का तذکرہ ही नहीं है, बस सीधा सीधा ये कह दिया ये दो काम कर लो तो जन्नत में जाओगे। तो हालांकि आप देखिए कि उसका तذکرہ पीछे हुआ। मैं तो ऐसी बात का जवाब भी नहीं देना पसंद करती, लेकिन सिर्फ आपको इशारा कर देती होती हूँ। पीछे भी एक आयत गुजरी है कि जिसकी बुनियाद पे लोग कहते हैं नहीं बस अल्लाह को मानो और जो भी अच्छे काम करो, जिस मजहब पे रहो तुम जन्नत में जाओगे। शायद पे भी कहते हैं कि देखो इसमें बस कहते हैं मन असलम, अल्लाह के आगे झुक जाओ, चेहरे को झुका लो, मोहसिन बन जाओ, और दैट्स इट, तुम्हें अल्लाह के नबी की तो जरूरत नहीं। तो कौन सिखाएगा कि अल्लाह कौन सा, किस रब के आगे झुकना है, पत्थर के आगे झुकना है या किसी पीपल के पत्ते को खुदा कहना है, किसको कहना है? तो रसूल को निकाल देंगे तो बातें सारी खत्म हो जाएंगी। तो ये देखिए कि आपको आज के पूरे सबक में से जो बात आपको अपने लिए मिली वो क्या मिली। अब आप लिखें भी, और जरा एक लफ्ज़ में कोई बता सकता है? देखने में सारे डिफरेंट वाक्यात है लेकिन सब के बीच में बुनियादी थीम एक ही है, वो क्या है? देखिए असल जो बात है ना इस सबक में, इल्म की महफिलें कैसी होनी चाहिए। आपने फील नहीं किया 3 बातें सारी इल्म की महफिल में, कि इल्मी महफिलों की बरकत क्यों चली गई आज? आज इल्म के बावजूद भी बेदीनी और बेअमली क्यों पैदा हो रही, इसकी वजह ये तो नहीं कि इल्म के नाम पे महफिलें नहीं सजती लेकिन नतीजे नहीं निकलते। यकीन करें कि मैं अल्लाह ताला से इतना ज़्यादा इस चीज़ पर डरती हूँ और खौफ खाती हूँ, ये अल्लाह का और मेरा मामला है, आपका इसमें बिल्कुल एक पॉइंट भी कोई इसमें हिस्सा नहीं है। लेकिन मैं इस चीज़ पर इतनी ज़्यादा अल्लाह ताला का शुक्र करती हूँ कि बाज़ दफ़ा वक्त ऊपर नीचे चला जाता है, लेकिन पूरी क्लास के दौरान जब मैं आपको पढ़ा रही होती हूँ, जिस वक्त जैसे अभी पढ़ाया है, मेरा जहन इससे इधर उधर नहीं जाता कि मैं आपको ज़रा कोई बात सुना दूँ, कोई खरी खरी सुना दूँ। जहाँ आपकी इसलाह के लिए ज़रूरत होती है, इशारतन बात भी होती है कि आपकी इसलाह है ताकि कुरान की आयतों से आपको मिले, मैं क्यों कुछ कहूँ। अदरवाइज कभी ये नहीं हुआ कि यहाँ बैठ के सियासत की बातें और इसी तरह यहाँ बैठ के किसी मीडिया वालों को खरी खरी सुनानी। बाज़ लोगों को मैंने देखा है कि वो दर्स शुरू करते हैं और उसमें कुरान की आयतों की रोशनी में वो पूरी सियासत को भी डिस्कस कर लेते हैं, मुल्की सतह, और इसी तरह फिल्म इंडस्ट्री को भी पूरे जरखमाल करते हैं। तो मैं डरती हूँ इस बात से कि कहीं दिल सख्त ना हो, हमेशा उसके थीम पे रहे, उस आयत से इधर उधर ने। अब ये आयतें ऐसी कि सिर्फ एक एक आयत पे घंटे घंटे का दर्स हो सकता है, लेकिन 1 घंटे के तफसीर के सेशन में आप एक को लेंगे तो बाकी का हक नहीं देंगे ना। तो लिख लें कि दीन वाले की बात में तासीर कब आती है, कि जब वो अल्लाह की बातों में अपनी बातें नहीं शामिल करता। अभी हम इस वीकेंड पे कहीं थे तो क्लास ख़त्म हुई अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि वो सेशन भी ऐसा ही था कि जिसमें मधु इनमें से ज़्यादा लोग वही थे कि जो क्लासें करते जाते सुनते, यानी कोई नए लोग नहीं थे, सब लोग माशाल्लाह जुड़े थे। जब ख़त्म हुआ दर्स, उनमें से एक साथी पास आई, खुद उनके लफ्ज़ हैं, बदल दूँ फ़र्क हो जाए लेकिन थीम वही याद है। कहती मेरा कोई दिन नहीं खाली के जहाँ मैं जिस दिन किसी जगह ना जाती हूँ, क्लास वीकली एक दिन इधर उधर, कहती लेकिन जो आज मेरे दिल में उतरा है ना, मुझे नहीं लगता मैंने कभी कुरान को ऐसे जज्ब किया। हालांकि दर्स था हमारा, कोई ये तफसीर की क्लास नहीं, और आपको भी पता है कि दर्स और तफसीर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, आप लोग सुनिएगा जब वेबसाइट पर आएंगे। बल्कि ये हमारा पूरा जो स्कॉटलैंड का ट्रिप था, ये ट्रेनिंग सेशन था, सक्सेस, कामयाबी कौन, कामयाब कैसे होना है, कैसे नहीं होना, क्या, बिल्कुल सिंपल सी बातें की हमने। लेकिन मैं देखती हूँ कि इसमें मेरी कोई कमाल नहीं, सिर्फ इसमें जो मुझे लगता है बात अगर किसी के दिल में उतरेगी तो उसकी वजह यह कि मैंने कभी शौरी तौर पे कुरान सामने रख कर अपने अफकार, अपने ख्यालात, अपनी बातें नहीं रखी। मैं कहती हूँ नहीं, अल्लाह की बात के अंदर मैं अपनी बात क्यों मिलाऊँ। तो बहरहाल अल्लाह ताला हम सब के लिए खैर के दरवाजे खोल दें। जजाकअल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।
वालेकुम अस्सलाम।